ओम शांति। आप सभी आज बाप दादा की मीठी मुरली सुनी है। मुरली में बाबा ने शुरू में ही कहा कि मीठे बच्चे सत का संग चढ़ाता है, सत के संग से तुम चढ़ते हो। अभी सत बाप का संग मिला है, बच्चे अब झूठ संग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि संगम युग है ही चढ़ने का युग। जब बाप ये शब्द कहता है कि सत का संग मिला है, झूठ संग की तरफ नहीं जाना, तो झूठ का संग किसे कहा जाता है? क्या झूठ का संग माना अज्ञानी आत्माओं का संग? नहीं, संग पांच प्रकार का होता है। एक सत को छोड़कर बाकी सब झूठ हैं, वो पांचों प्रकार का संग है। पहला है पाप आत्माओं का संग। पाप आत्मा अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वशीभूत आत्माएं, अर्थात इन विकारों के बस संकल्प बोल कर्म करने वाली, वो है पाप आत्मा। दूसरा है पुण्य आत्माओं का संग। पुण्य आत्मा अर्थात जो दान पुण्य करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। दुनिया में कहते भी ये तो बहुत पुण्य आत्मा है। तीसरा है महान आत्माओं का संग। महान आत्मा अर्थात साधु, संत, सन्यासी, जो कथा कीर्तन करते, भजन करते, सुनाते या तपस्या करते, सब महान आत्माएं हैं। इन महान आत्माओं का संग। और चौथा है श्रेष्ठ आत्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं का संग। जिसने भगवान को पाया वो श्रेष्ठ बन ही गया। और पांचवा है सत का संग अर्थात शिव बाबा का संग। तो ये पांच प्रकार का संग है। इन पांचों प्रकार के संग से कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। संग का रंग लगता ही है। जब हम आप सब ज्ञान में नहीं थे, बाबा के बच्चे नहीं बने थे, तो पाप आत्माओं के संग में रहते थे और उन्हीं के संग का प्रभाव था। जैसा वो बोलते थे, करते थे, कहते थे, वैसा ही हम करते थे, उनका प्रभाव था। कोई फिर दान पुण्य आत्माओं के संग में आए तो दान पुण्य करने लगे, मतलब संग का रंग अवश्य लगता है। लेकिन चौथा संग जो श्रेष्ठ आत्माओं का संग है, ब्राह्मण तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से चेक करना है कि श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वरूपधारी हैं या नामधारी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण बनना ही श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि भगवान के बन गए। तो नामधारी हैं या स्वरूप अथवा कर्मधारी श्रेष्ठ है, तो आपको श्रेष्ठ अर्थात जो स्वरूप अथवा कर्मधारी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका संग करना है। ब्राह्मण का संग माना सभी ब्राह्मणों का नहीं, नामधारी का नहीं, कर्मधारी स्वरूपधारी जो ब्राह्मण हैं उनका संग करोगे तो उस संग का प्रभाव पड़ेगा, आप भी वैसे बनते जाएंगे। बाबा मुरली में कहता भी है, बच्चे आप उनका संग करो जो ज्ञानी योगी हों, जो बाप को फॉलो करने वाले हों, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं का संग करो। संग का रंग अवश्य लगता है। जैसे देखो संग के रंग का प्रभाव, क्यों बाबा संग पर इतना जोर देता है, यहां तक कहता है संग तारे कुसंग डुबोए, डुबो ही देगा, जीवन ही खत्म कर देगा कुसंग, क्योंकि संग का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इन ग्रह नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, बरसात के अंत में ये नक्षत्र आता है, और उस स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है, उस पानी को जैसा जैसा संग मिलता है, पानी एक ही है लेकिन जैसा जैसा संग उस पानी को मिलता है वैसा वैसा वो पानी बन जाता है। उदाहरण के रूप से जब स्वाति नक्षत्र का पानी घास पर गिरता है तो वो ओस बन जाता है। ओस जानते हैं ना, जो पानी की बूंदे घास के ऊपर होती है, सूर्य की किरण पड़ती है तो चमकती है। तो घास का संग मिला तो ओस बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सांप के मुंह में पड़ता है तो वही पानी जहर बन जाता है। देखो पानी वही है, घास मिली तो ओस बना, सांप मिला तो जहर बना। वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब बांस पर गिरता है, बांस जानते हैं जो अर्थी के काम आता है, जिसकी अर्थी बनती है, बट का जंगल जिसको बाबा कहता है, जिससे अर्थियां बढ़ती है बांस, तो जो छोटे छोटे नए नए बांस के पौधे निकलते हैं जब उन पर गिरता है तो उससे वंश लोचन नामक दवा बनाई जाती है, जो बहुत बीमारियों को ठीक करती है। देखो पानी की संग की विशेषता, सांप के मुंह में पड़ा तो जहर बन गया, बांस का संग मिला तो दवा बन गई। पानी वही है और वही पानी जब केले पर पड़ता है तो उससे कपूस बनाया जाता है। कपूस मतलब वो कपूस ये नहीं जो कपड़ा बनता है, कपूर, कपूर जानते हैं जो कपूर बनता है, बीमारी में काम आता है, किसी दवाई में आता है। तो जब केले पर पड़ता है तो उससे कपूर बनता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है। देखो पानी एक ही है, स्वाति नक्षत्र का ही पानी है, लेकिन जैसा जैसा संग मिला वैसा वैसा वो बनता गया। आत्मा भी वही है, एक ही है, लेकिन आत्मा को जैसा जैसा संग मिलता गया आत्मा वैसे वैसे बनती गई। अभी बाबा कहता है कि तुम बच्चों को सत बाप का संग मिला है, उस संग से तुम्हें चढ़ना है। कितना चढ़ना है? मुक्ति धाम तक जाना है। मुक्ति धाम तक तो पवित्र बनेंगे तो भी जाएंगे, नहीं बनेंगे तो भी जाएंगे। लेकिन बाबा क्यों कहता है कि आपको पवित्र बनकर चलना है? भगवान के बने हैं, सजा खाके भी जाएंगे लेकिन स्वर्ग में आएंगे जरूर, पद कम होगा लेकिन आएंगे। तो लेकिन बाबा कहता पावन बनकर चलना है। क्यों कहता है? पावन बनकर चलने में और बिना पावन बने चलने में अंतर बहुत है। जैसे पहले भी क्लास में सुनाया है, आपके शहर में जब कोई बड़ा वीआईपी आता है तो आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ गनमैन होते, बॉडीगार्ड कहते, वो चारों तरफ बंदूक के बीच में वो वीआईपी चलता है, बड़े शान से चलता है, लोग नमस्कार करते हैं उसे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बड़ा चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के ही बीच में चलता है। अब चल तो दोनों बंदूक के बीच में ही रहे हैं, लेकिन कितना अंतर है चलने में। एक चल रहा है तो सलाम भर रहे हैं, एक चल रहा है तो सिर नीचे करके चल रहा है। लोग गिरी हुई दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे अगर आप संपूर्ण पावन नहीं बने, चलेंगे तो जरूर संपूर्ण पावन नहीं बने, तो ब्राह्मण आत्माओं की नजरों में गिरे हुए होंगे। कोई ब्राह्मण आत्मा आपको अच्छा नहीं कहेगी उस समय, गिरे हुए होंगे। और धर्मराज के आगे सलाम भरना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता, बच्चे मुझे निरंतर याद कर, अर्थात मन बुद्धि से मेरे संग निरंतर रहो, तो मेरे संग का रंग आप आत्माओं को मुझ बाप समान पावन बना देगा, संग का रंग अवश्य लगेगा। तो निरंतर बाप के संग में कैसे रहें, क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ ही है बाप के संग में रहने का, अर्थात मन बुद्धि सदा बाप के साथ लगी रहे। तो बाप के साथ सदा रहने की विधि है, ऐसे तो कई उपाय हैं, मुख्य रूप से पांच बातें हैं। अगर उन पांच बातों को प्रैक्टिकल में ले आओ, तो आप निरंतर भगवान के संग के रंग में रह सकते। पहली बात है अंतर्मुखता। जो बोलता ज्यादा है, बाहर व्यक्त भाव को देखता है सुनता है, वो योगी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान अव्यक्त है, व्यक्त से परे। तो अव्यक्त के लिए अंतर्मुखता पहले बहुत जरूरी है। अंतर्मुखी बनो, अंदर आत्मा है, उस पर आपका मनन चिंतन ध्यान उसी पर रहे। मैं आत्मा हूं, जिसको देखो अंदर से यही संकल्प कि ये भी आत्मा है। शरीर जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर की भावना है ये आत्मा है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर देह देखने की आदत ही है, देह ही देखते हो, इतनी छोटी बिंदी नहीं देख पाते हो, तो भले देह देखो लेकिन लाइट का शरीर देखो। हमेशा अंदर संकल्प रहे लाइट के कार्ब में बैठी हुई आत्मा है। मैं आत्मा भी लाइट के कार्ब में बैठी हुई हूं। तो जितना ये अंदर संकल्प चलता रहेगा, उतना आप अंतर्मुखी बनते जाएंगे, और जितना अंतर्मुखी होते जाएंगे उतना ऊपर चढ़ते जाएंगे, बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। तो पहली बात है अंतर्मुखता, दूसरी बात है भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार अर्थात, ने पहले भी क्लास में बताया है, प्यार की तीन स्टेजेस है, प्यार की तीन स्टेजेस, प्यार, प्रेम, स्नेह। सच्चे दिल का प्यार अर्थात भगवान से स्नेह करना, प्यार, प्रेम और स्नेह, तीनों में बहुत अंतर है या एक ही है? प्यार, प्रेम, स्नेह, क्या कहेंगी शक्तियां, तीनों एक है या अलग अलग है? आप लोगों का भगवान से प्यार है या प्रेम है या स्नेह है? तीनों इकट्ठा नहीं हो सकता। क्या है पांडव? भगवान से प्यार करते हो या प्रेम रखते हो या स्नेह निभाते हो, क्या करते हो? अच्छा, तीनों अलग अलग है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जब पहले दिन आप भगवान के घर में आए, कदम रखा, आपके साथ और कुछ साथी आए होंगे, हो सकता अकेले भी आए हों, और जैसे बहनों ने या किसी ने समझाया, भगवान का परिचय दिया, प्राप्ति के बारे में बताया, आप यहाँ आओगे तो भगवान से क्या क्या मिलेगा, तो आपका प्यार भगवान से जुड़ गया। प्राप्ति प्यार स्वतः ही कराती है, प्राप्ति से प्यार स्वतः ही होता है। उदाहरण के रूप से, कोई माँ बाप है, भले कहे कि मुझे बच्चा मेरा बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, लेकिन जिस दिन आप बच्चे को कह दो कि अपनी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी आपको नहीं देंगे, देखो कितना प्यार करेगा, करेगा प्यार नहीं? प्राप्ति प्यार कराती है, ऑटोमेटिक, कुछ भी हो, बिना प्राप्ति के प्यार नहीं। तो भगवान से प्राप्ति का मिलते ही मैसेज प्यार हो गया, लेकिन जो स्वतः होता है वो टूटता भी जल्दी है। जैसे आजकल की कलयुगी दुनिया में स्वतः प्यार किसे कहते हैं? लव मैरिज। मुश्किल से थोड़ा समय निभता है फिर टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो विदेशों में देखो, एक के साथ कभी जीवन निभा ही नहीं पाएंगे। तो जब आप बाबा के घर में आए, प्राप्ति का पता पड़ा, तो भगवान से प्यार जुटा और बहनों ने बताया यहां आपको भगवान से पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, आप आकर समझो। आप आकर कोर्स करना शुरू किया, प्यार से कदम आगे प्रेम की तरफ बढ़ाया। जब कोर्स करना शुरू किया, कोर्स पूरा कर लिया, जच गया, मुरली सुनने लगे और बहनों ने धारणा की बात बताई। जब धारणा की बात आई और आपने धारणा को अपनाया, फिर फाइटिंग शुरू हो गई। चाहे अपने संस्कार से, चाहे लौकिक परिवार से, समाज से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो कुछ समय तो आत्मा ने अपने शक्ति के आधार से, ज्ञान योग के समझ के आधार से विघ्नों का सामना किया। लेकिन जब अति हो गया, अपने आप से बाहर होने लगा, तो आत्मा बैठ करके सच्चे दिल से आंख में आंसू भी भर के बाबा को अपने दिल की बात बताई। बाबा मेरे सामने ये विघ्न है, बाबा कुछ मदद करो। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने सच्चे दिल से बाबा के आगे अपनी बात रखी और उसकी वो समस्या खत्म हो जाती है, अनुभव या नहीं, सबको है, वो समस्या खत्म हो जाती। तो प्रेम अर्थात मेरा काम है पुरुषार्थ करना, आपके श्रीमत पर चलना, बाकी आपका काम है मदद देकर आगे बढ़ाना। यह प्रेम, प्रेम करना पड़ता है, योग लगे न लगे लगाना ही पड़ेगा। भगवान से प्यार का अनुभव हो ना हो, प्यारे बाबा मीठे बाबा कहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है। धीरे धीरे अनुभव के स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन पहले करना पड़ता है। और जब आत्मा ने देखा बाबा ने विघ्न दूर कर दिया, तो उमंग में आई और आ करके मन ही मन कहने लगी, बाबा अब ये तन आपका है, तन मन धन सब बाबा आपका, अब ये जीवन आपके हवाले। बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, बाबा अब ये जीवन आपके हवाले। इसको कहा जाता है स्नेह करना। लेकिन जब ये वायदा करती है आत्मा भगवान से, तो स्नेह को निभाने में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। जिन आत्माओं ने त्याग कर दिया, वो तो भगवान को अपने बस में कर लेते, और जो त्याग नहीं कर पाए, مسلمان میں کہتے ہیں اللہ کو پیاری ہے قربانی، بھگوان کو پیاری ہے قربانی. کون سی قربانی؟ جو بھگوان کو نرنتر یاد کرنے میں بگھن ڈالے، جو بھگوان کی سریمت پر چلنے میں بگھن ڈالے، اس کی قربانی. اس میں نمبر وار ہو جاتی، کیونکہ سنیہ کا ارتھ ہی ہے جو سنیہی کو پسند ہو وہی مجھے کرنا ہے. پریم میں ہے کچھ میں کروں کچھ آپ کرو، اور سنیہ میں ہے جو سنیہی کو پسند ہے وہی مجھ آتما کو کرنا ہے. چاہے مرنا پڑے، چاہے جھکنا پڑے، چاہے مٹنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، سب کریں گے، لیکن جو سنیہی کو پسند ہے وہی مجھے کرنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر سنیہی کے پسند کا آپ نے کیا، بھگوان سے سچا پیار کیا، تو ریٹرن میں کیا ملے گا؟ بھگوان کے دوارا بردان. اور جب بردان مل جائے گا، پھر بردان کام کرے گا، آپ کی محنت ختم ہو جائے گی. جیسے بردان لینے میں محنت ہے، لیکن بردان ملنے کے بعد پھر بردان کام کرتا ہے، آپ کی محنت ختم ہو جاتی ہے. جیسے اپنی گلزار دادی تھی، جب چھوٹی تھی شروع شروع میں ہی، تبھی دادی کو بہت ایکانت پریہ تھا، بہت کم بولتی تھی، دھیرے سے بولتی تھی، اور تپسیا میں کھوئی رہتی تھی. اس کے اس سوروپ کو دیکھ کر بابا نے دادی کو بردان دیا تھا. حیدرآباد میں، پاکستان میں، بردان دیا تھا کہ اس بچی کے بول بہت میٹھے ہیں، آگے چل کر یہ بول بہت سیوا کرے گی، اس بچی کے نین بہت روحانی ہیں، آگے چل کر دین بہت سیوا کرے گی. یہ بابا نے اس سمے بردان دیا تھا. اور دیکھو، سوئم باپ دادا دونوں اس رتھ پر سوار ہو کر دیا ہوا اپنا بردان پورا کر رہے، مکھ کے دوارا بول رہے، نینوں کے دوارا درشتی دے رہے. تو بردان لینے میں محنت ہے، اور بردان مل جائے تو پھر برداتا سوئم بردان کو فلیبھوت کرتا ہے. جیسے اب بردان لینے کی سہج بدھی بتاتا ہوں، ہے سہج، صرف کرنے پر ہے. جیسے بھکتی میں بتاتے، ایک کہانی بتاتے ہیں اپنی سب کی، بھکتی میں بتاتے ہیں کہ ایک بار سیتا جی اسنان کر کے مانگ میں سندور بھر رہی تھی، جیسے ماتائیں سندور ڈالتی، تو ہنومان جی جا رہے تھے، تو سندور ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، ماتا جی یہ کیا کر رہی ہو؟ तो सीता जी ने कहा मांग में सिंदूर डाल ले। तो हनुमान जी ने कहा इससे क्या होगा, क्यों डालती हो? तो सीता जी ने कहा इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं। पर जैसे ये शब्द सुना हनुमान जी ने कि इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं, भाग करके गए, ढेर सारा सिंदूर ले आए और ला करके बड़े खुशी से अपने पूरे शरीर पर सिंदूर डालने लगे। तभी से यादगार रूप में हनुमान के शरीर पर सिंदूर का लेप करते हैं। तो राम जी जा रहे थे, हनुमान को सिंदूर डालते हुए देखकर पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? तो बहुत खुशी में थे, बोला प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ। तो बहुत खुशी में थे। तो राम ने कहा क्या बात किया है, क्या प्रसन्न हो जाए? बोला प्रभु जी मैं सब जानता हूँ, माता जी सिंदूर लगाती है उसको देखकर आप खुश होते हो, वो तो जरा सा लगाती है, मैंने देखो ढेर सारा सिंदूर लगा लिया है, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ। अब सिंदूर लगाना तो एकमात्र आधार था, लेकिन सिंदूर लगाने के पीछे कितना हनुमान जी की त्याग और तपस्या थी। देखो जब सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे सारे शरीर पर सिंदूर लगेगा, बंदर समाज से टोटल अलग हो जाऊंगा, बदरंग हो जाऊंगा, मुझे बंदर समाज अपने समाज में रखेगी भी या समाज से निकाल देगी इसकी चिंता नहीं की। एक ही संकल्प रहा, प्रभु जी कैसे प्रसन्न हो। अपने दिल पर हाथ रखकर देखना कि हम बाबा के पसंद का ही सब करते हैं या समाज वाले, लौकिक वाले या किसका किसका आदि आदि, भगवान को राजी कर पाते हैं। दूसरी बात, हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि अगर पूरे शरीर में सिंदूर लगेगा, लग जाएगा, तो बंदर समाज मुझे अपने समाज से बाहर निकाल देगी। ना समाज की चिंता की, ना अपने देह की चिंता की, एक ही चिंता की कि प्रभु जी कैसे प्रसन्न हो। आपको भी भगवान को प्रसन्न करना है तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों भगवान के पसंद का करो। आपकी मनसा कैसी हो, मन में बाबा की याद हो या तो सदा शुभ भावना शुभ कामना हो, ऐसे मनसा वाले से भगवान खुश होते। या बाबा की याद या शुभ भावना शुभ कामना हो, बाणी कैसी हो, जिस बाणी से दूसरे की चढ़ती कला होती हो, जिस बोल के द्वारा दूसरे का जीवन महान बनता हो, जो बोल दूसरे को भगवान की याद दिलाता हो, वो बोल महावाक्य है, वो बोल भगवान को पसंद है। तीसरी बात, कर्म। भगवान को वो कर्म पसंद है जिस कर्म को देखकर चरित्र अनुभव हो। चरित्र अर्थात आपका उठना बैठना बोलना चलना जैसे हम सबका संकल्प होता है। देखें बाबा कैसे चलता है, बाबा कैसे बोलता है, बाबा कैसे खाता था, जीवन कहानी सुनना अच्छा लगता है ना बाबा का। तो ऐसे आपका देखना उठना बोलना चलना अलौकिक हो वो भगवान को पसंद है। अगर संकल्प बोल कर्म तीनों भगवान के पसंद का कर लिया तो भगवान राजी हो जाएगा और आपको वरदान दे देगा। तो यही तीन बात हनुमान जी में थी जिस कारण से भगवान हनुमान जी के ऊपर राजी हो गए और वरदान दे दिया, जिस वरदान के कारण हनुमान जी के पास इतनी शक्ति आ गई कि जो चाहे सो कर सकता था। ठीक है, तो दूसरी बात सच्चे दिल का प्यार, तीसरी बात है अमृत बेला पावरफुल बनाना। अगर आपका अमृत बेला पावरफुल नहीं हुआ तो आपका दिन तो पावरफुल होने का सवाल ही नहीं। अमृत बेला आदि बेला है, आदि का प्रभाव मध्य और अंत पर पड़ता है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया कि जब ट्रेन चलती है तो इंजन को मेहनत लगती है और जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफी दूर तक चली जाएगी। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो आपका अमृत बेला पावरफुल हो उसका आधार है आपका पहला संकल्प पावरफुल। अगर पहला संकल्प पावरफुल है तो आपका योग पावरफुल रहेगा, क्योंकि पहला संकल्प सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आप चेक करके देखना, कल सुबह चेक कर लेना, मेजॉरिटी तीन प्रकार का संकल्प आता है सोकर उठते ही, चेक करके देखना। कल कई सोकर उठते ही घड़ी देखते कितना बजा है, क्या टाइम हुआ है, और कई सोकर उठते ही जो अगले दिन की दिनचर्या थी न्यूज देखते देखते सोए थे, कुछ ऐसी किताब पढ़ते पढ़ते सोए थे या कोई बात याद करते करते सोए थे, सोकर उठते ही वो याद आता है। और कोई सोकर उठते कहते बाबा गुड मॉर्निंग करते, तीनों की रिजल्ट क्या होती है कल देख लेना प्रयोग करके। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, कौन है जो सोकर उठते ही घड़ी देखता है, सोकर उठते ही घड़ी देखते क्या टाइम है, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, जो भी हो। अच्छा, जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं वो जब योग में बैठेंगे तो हर 10-15 मिनट के बाद संकल्प जाएगा कितना समय बीता, अभी कितना देर बाकी है, कितना देर बाकी है, वो टाइम कॉन्शियस ही रह जाएंगे। नहीं तो कल प्रयोग करके देख लेना, पहले संकल्प का प्रभाव 100% पड़ता है। दूसरा है जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव, अगर वो सो करके उठते आ गया तो कितना भी कोशिश करो योग में उसको रोकने की, बार बार वही रिपीट होता रहेगा, नहीं हो पाएगा। कई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा मतलब शिव बाबा गुड मॉर्निंग, जो सोकर उठते सिर्फ शिव बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं उनका बहुत समय अशरीरी होने में ही बीत जाता है, टिक ही नहीं पाते, क्योंकि बिना बिंदु बने शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो ही नहीं पाएगी। और बहुत समय बीत जाता है बिंदी बनने में, टिक ही नहीं पाते, और रिजल्ट ये होती है या नींद आएगी या तो फिर निराश हो जाते हैं योग से। कोई कोई बहुत मेहनत के बाद टिक पाते, तो क्या करना है? सोकर उठते ही चाहे कितना भी बजा हो, 12 बजाओ, 1 बजाओ, कितना भी बजा हो, सोकर उठते ही आपकी आंख खुली, तुरंत आपका पहला संकल्प मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, कितना भी बजा हो सबसे पहले सोकर उठते गुड मॉर्निंग करो, फिर घड़ी देखो, टाइम है सो जाओ, नहीं हो तो जैसा टाइम, बाप दादा गुड मॉर्निंग दोनों से गुड मॉर्निंग करना अति आवश्यक है, मात पिता दोनों से, सिर्फ बाप से नहीं मां से भी गुड मॉर्निंग दोनों से करो। गीत है ले लो दुआएं मां बाप की, गुड मॉर्निंग दोनों से करो, या शिव बाबा को करो, स्नेह दोनों से रखो। गुड मॉर्निंग दोनों से या शिव बाबा को करो, स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। इसमें थोड़ा मूंझ रहे होंगे, दोनों से गुड मॉर्निंग का मतलब आपको आशीर्वाद मां बाप दोनों से लेना है, आपको फरिश्ता भी बनना है, फरिश्ता बनकर देवता भी बनना है, और आत्मक स्वरूप बनकर घर भी चलना है, इसलिए दोनों जरूरी है। मां बाप से गुड मॉर्निंग करो और याद शिव बाबा को करो, क्योंकि शिव बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे, ब्रह्मा बाप की याद से श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मिलेगी, श्रेष्ठ कर्म करने का आपको टचिंग आएगी, फॉलो फादर सहज हो जाएगा, लेकिन याद शिव बाबा को करना, गुड मॉर्निंग दोनों से करना, स्नेह ब्रह्मा से रखना। स्नेह का मतलब जैसे लौकिक दुनिया में किसी का बाप मां शरीर छोड़ देता है, बच्चे का मां बाप से बहुत प्यार था, आज्ञाकारी था, तो बच्चा क्या करता है, मां बाप का फोटो लगा देता है, और रोज सुबह उठकर चाहे अगरबत्ती जलाता है, फूल या ना भी हो, तो फोटो के आगे जाकर कहता है कि आप जो कहा है वो मैं करके रहूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूंगा, ये उनके आगे रिपीट करता है। इसको कहा जाता है स्नेह निभाना। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखना, फॉलो फादर। तो स्नेह ब्रह्मा से रखो, गुड मॉर्निंग दोनों से करो, और याद शिव बाबा को करो। फिर निरंतर आपका संग बाप के साथ छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
आपकी याद बाबा रह रह के आए,
आपकी याद बाबा रह रह के आए, देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, व्यक्त होके सेवा और भी विशाल की,
सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
आपकी याद बाबा